परमेश्वर अपनी योजना को बनाता और उसको पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, क्योंकि परमेश्वर सर्व सामर्थी है और परमेश्वर सर्व अधिकारी है। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्व अधिकारी है और परमेश्वर सर्व सामर्थी है। क्योंकि वो सर्वज्ञानी है इसलिए उसको पूरा ज्ञान है, उत्पत्ति से पहले से लेकर, संसार की उत्पत्ति से पहले लेकर संसार के अंत तक, अनादि काल तक उसके पास सब कुछ ज्ञान की भरपूरी है। और जैसा अभी हम भाई से भी सुन रहे थे, परमेश्वर सर्व अधिकारी है, उसके अधिकार में हर मनुष्य है, उसके अधिकार में स्वर्गदूत हैं, उसके अधिकार में सब कुछ है और वो अपने अधिकार में होकर सब कुछ कर सकता है, इसलिए वो सर्व सामर्थी है। फिर से दोहरा रहा हूं, परमेश्वर अपनी योजना को बनाता और उसको पूर्ण करता है क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, वो सर्व अधिकारी है और वो सर्व सामर्थी है। पहले भाग में जब हमने पिछले इतवार को देखा था तो हमने देखा था किस प्रकार से स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है और जकरिया को संदेश देता है। अब इस स्थल में हम दूसरे स्थल में देख रहे हैं कि अब स्वर्गदूत आता है और मरियम को संदेश देता है। मेरे साथ थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले पहला अध्याय उसका 13-14 पद पढ़िए, पहला अध्याय उसका 13-14 पद। पर स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी एलिशबाग से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यहोन्ना रखना, तुझे आनंद और हर्ष होगा, उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। यहां पर आकर स्वर्गदूत एक संदेश दे रहा है जो जकरिया को दे रहा है, वो कह रहा है तू भयभीत ना होना। ठीक इसी प्रकार का संदेश स्वर्गदूत आता है और मरियम को देता है जो 26 से 29 पद में है। कहता है यहां पर मैं 30 पद को, तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। जकरिया को संदेश मिला तू भयभीत ना हो, मरियम को संदेश मिला तू भयभीत ना हो, लेकिन दोनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं, जिसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। पर जो आज हम विचार करना चाहते हैं, इस स्वर्गदूत का संदेश में तीन मुख्य बातें हैं जो वो स्वर्गदूत संदेश जो वो जकरिया को उसने दिया और जो वो आज मरियम को दे रहा है, वो तीन मुख्य इस संदेश में है। मैंने पिछली बार बताया था कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को उसका विभिन्न कार्य के लिए उपयोग किया है और उसमें जो जिब्राइल स्वर्गदूत है उसका मुख्य कार्य, मुख्य सेवा वो लोगों को संदेश पहुंचाना है, और वो ही स्वर्गदूत आज मरियम के पास भी पहुंच रहा है। क्या है वो बादशाह जो परमेश्वर ने दी उसको पूरा करना है, ये पूर्णता है इस संदेश में। दूसरी चीज वो प्रतिज्ञा जो अदन की वाटिका में हम देख रहे हैं, मैंने पिछली बार भी उत्पत्ति उसको तीसरे अध्याय में सुसमाचार का पहला जो सुसमाचार है वो अदन की वाटिका से शुरू हुआ। जो सुसमाचार हमारे जीवन का आधार है, जो सुसमाचार हमारे पवित्र बाइबल का आधार है, जो सुसमाचार मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि उस सुसमाचार के द्वारा वो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करके उस तक पहुंच सके, उसका आरंभ यीशु के जन्म से नहीं है या नए नियम से नहीं है, लेकिन उसका आरंभ उसी समय से हुआ जिस समय मनुष्य पाप में गिरा, और पाप में गिरने के बाद ही तुरंत परमेश्वर ने उस सुसमाचार को दिया जो मनुष्य को बचाने का था, जो मनुष्य को पुनः अपने पास वापस लाने का था। और मैं पिछली बार भी आपके साथ बोल रहा था कि उत्पत्ति उसके तीसरे अध्याय 14 पद में हम देखते हैं। तो ये उसकी प्रतिज्ञा थी अदन की वाटिका में, उसके उत्पत्ति तीसरे अध्याय उसके 14-15-16 पद में, जो उस कहता है कि जब वो स्त्री से उसे सर्प से बात करता है, सर्प से बात करते हुए कहता है कि मैं तेरे सिर को कुछ, वो तेरे सिर को कुछ लेगा तो उसके एड़ी को डसेगा, 3 अध्याय उसका 15 पद। सो वहां से हम देखते हैं, तो ये प्रतिज्ञा थी, अब यह संदेश जो है वो समय आ गया है कि वो प्रतिज्ञा पूरी की जा सके। उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं परमेश्वर निरंतर बार बार वाचाएं देता रहा, जो इब्राहिम के चुनाव से, इब्राहिम से उसने वाचा दी, उसने मूसा को उसने वाचा दी, उसने दाऊद को वाचा दी, अब वो समय आ रहा है जो उन वाचाओं को वो पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना में होकर वो सब कुछ कर रहा है। तो वो प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का संदेश है, वाचा को पूर्ण करने का संदेश है, ना कर ये लेकिन मनुष्य की आशा को पूर्ण करने का संदेश है। वो आशा, जिस आशा में आरंभ से हम देख रहे थे वो कौम या प्रजा बैठी हुई है कि किस समय वो समय आएगा कि हम उस उद्धारकर्ता को या मसीहा को या छुटकारा देने वालों को पाएंगे। यद्यपि उनका दिमाग, उनके मस्तिष्क, उनका सोच पूरा एक सीमित है, लेकिन परमेश्वर की जो योजना में आशा है वो बहुत उससे कहीं बढ़कर है। सो ये संदेश उसके पास आता है। अब हम आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं, आइए मेरे साथ पहला अध्याय और उसके 26 पद से। छठे महीने के परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सरदूत नासत नामक गलील में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी जो दाऊद के वंश का था, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। ये बहुत ही अधिक जरूरी है कि हम मरियम के बारे में और परमेश्वर की योजना के बारे में कुछ जानें। अभी भैया ने कैथेड्रल का नाम लिया, और आप शायद जब 24 तारीख को जाएंगे, 25 तारीख को जाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारी भीड़ तो आती है, लेकिन लोगों के सामने जो मिथ्या है, लोगों के सामने जो गलत संदेश है, वो ये है कि मरियम सब कुछ है। क्यों परमेश्वर ने मरियम को चुना? मरियम के द्वारा उद्धार नहीं आया, मरियम के द्वारा जीवन नहीं आया, मरियम मध्यस्थ नहीं बनी। जो आज गलत में है, हमारे जो रोमन कैथोलिक विचारधारा के लोग हैं, ये कहां से मरियम आ गई? मरियम कहां से आ गई? जब कलीसिया बढ़ रही थी उस समय रोमन रास्ता, इसका ऐतिहासिक फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो बढ़ रहे थे, और उस समय लोग थे जो अन्य जाति लोग थे, वो एक देवी की उपासना करते थे, देवी की उपासना करते थे, देवी की पूजा करते थे। लेकिन उस समय जब रोमन राज था और उस समय बहुत सारे लोग विश्वास में आने लगे, तो बहुत सारे रोमी शासक थे, अधिकारी थे, वो भी इस पंथ के अनुयायी बन गए। माफ कीजिएगा जो आज शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे आज हम नामधारी मसीहों को देखते हैं, हम भी उसी तरह से चलते चले आ रहे थे, लेकिन बाद में सुसमाचार को हमने जाना। तब उन्होंने इस मरियम के को उसको लाकर मरियम के रूप में लाकर रख दिया और उसकी उपासना आरंभ करने लगे। यह मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, मनुष्य की मस्तिष्क की उपज है। और चूंकि बाइबल साफ इस बात को बताती है कि परमेश्वर किसी भी नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर की कोई मूरत बनाकर उसकी सामने सजा करें, लेकिन यह मनुष्य की उपस्थिति उन्होंने ऐसा लाकर रख दिया और बहुत सारे लोग आज उसी के सामने सोचने लगे, उसी को सब कुछ मानने लगे। तो जब हम जन्म प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में बात करते हैं, तो हमें इन बातों के बारे में भी जानना अनिवार्य और जरूरी है। और इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मरियम का एक अलग स्थान है, जिसको अभी हम देखेंगे क्या परमेश्वर उसके लिए क्या करा था। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर कह रहा है कि स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत क्या कह रहा है, और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम तुझे। ये अभिवादन करने तरीका है, प्रभु तेरे साथ रहे। क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है? वो इस्तेमाल कर रहा है प्रभु ने तुझ पर कृपा की है। परमेश्वर इस स्त्री पर, इस नारी पर कृपा कर रहा है। क्या कृपा कर रहा है? कृपा यह कर रहा है कि परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए, उस वचन को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसने उत्पत्ति उसके 3:15 में कहा था, और परमेश्वर मनुष्य नहीं जो अपनी बात कहकर भूल जाए या बदल जाए। हम गिनती की पुस्तक उसके 29 अध्याय में पाते हैं और उसके 19 पद में कि और परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो अपनी बात कहकर, क्योंकि उसने जो कहा है उसको करना है। इसलिए उसने स्त्री के लिए कहा था, इसलिए उसने स्त्री को चुना, और उस स्त्री को चुनने में उसने इस मरियम को एक ऐसी स्त्री करके देख लिया जिसके ऊपर उसने कृपा कर दी, कृपा पा दी। अर्थात स्वर्गदूत कह रहा है कि मरियम तुझ पर परमेश्वर की कृपा हुई है, अगर परमेश्वर ने तुझे अपनी योजना को पूरा करने के लिए चुन लिया है तो तुझ पर कृपा हुई है। और इसलिए हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर की कृपा के अनुसार
परमेश्वर ने उसको अपनी योजना को में पूरा करने के लिए उसको सम्मिलित किया है। इसलिए परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। जरूर उसके अंदर कुछ अच्छाइयां थी, वो ऐसी स्थिति जो परमेश्वर का भय मानती थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर की कृपा उस पर बनी है। तब वो आगे चल के क्या कहूं, और तब ये सब कुछ है लिखा है, वो घबरा गई और भयभीत होगी। लेकिन तब परमेश्वर जब इस स्त्री से बातचीत कर, स्वर्गदूत उसे बात कर रहा है और उसे सुना है, तब कह रहा है देख क्या होने वाला, परमेश्वर ने तुझ पर कृपा की है, परमेश्वर ने अपने चुनाव के लिए तुझको, अपने योजना को पूरी करने के लिए तुझको चुन लिया है, परमेश्वर की कृपा मतलब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। कह रहे हैं हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तुझ पर परमेश्वर की कृपा हुई है, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। अगर परमेश्वर तेरे को अपनी योजना को पूरा करने के लिए चुन रहा है तो यह उसकी कृपा है, यह उसका अनुग्रह है। और मेरे प्रियो यह सच है, आराम से इस बात को हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए किसी न किसी पर कृपा की, किसी न किसी पर अनुग्रह किया और उसको चुन लिया। जब इसराइलों को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाना था तो परमेश्वर ने मूसा पर अनुग्रह किया। मूसा तो मर सकता था मूसा, क्योंकि उस समय सारे बच्चों को 2 साल के पौलटों को मारा जा रहा था, फिरौन मरवा रहा था, लेकिन परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की कृपा थी और इसलिए परमेश्वर ने उसको बचा कर रखा था ताकि उस परमेश्वर के कार्य को वो पूरा कर सके। सो हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कृपा करने वाला और अनुग्रह करने वाला है और अपनी योजना को पूरा करता है और पूरा करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को या पुरुष को या स्त्री को चुनता है। हम संसार में बहुत सारी ऐसी बातों को देखते हैं, ये तो एक अद्भुत घटना, अद्भुत योजना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आप पर भी हुआ है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में कर मुझे और आपको भी चुना है। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे आएंगे, इफिसियों की पत्री में आएंगे, इफिसियों का पहला अध्याय, इफिसियों का पहला अध्याय। अभी हम लेपालक पुत्र की बात कर रहे थे और हमने सुना था किस रीति से किसी दिन होता है कि प्रभु ने चाहा तो हम इस लेपालक के विषय पर और अधिक बातचीत करेंगे, पर यहां पर क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, पहला अध्याय उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका 4 पद। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसने हमें अपनी इच्छा के भले प्रय के अनुसार पहले से अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपारक पुत्र होने के लिए ठहराया कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में सेत में दिया। उस अनुग्रह, यह अनुग्रह एक क्रिया है। यहां पर परमेश्वर ने कुछ किया है, परमेश्वर ने अनुग्रह अपनी योजना को पूरा करने के लिए मरियम के ऊपर अनुग्रह किया। परमेश्वर आज मुझे और आपको उसी सूची में, थोड़ा सा हम आगे बढ़ के और देखेंगे, लेकिन स्पष्ट संबंधित होकर मैं कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर भी अनुग्रह किया है। क्यों? क्योंकि अदन की वाटिका में पाप करने के कारण हम सब पापी हो गए थे। एक व्यक्ति का कारण, रोमियो का पौलुस कहता है, एक व्यक्ति का कारण पाप जगत में आया, उसी व्यक्ति के कारण मृत्यु जगत में आई और सब मनुष्य में फैल गई। और इसीलिए तो वो कहता है इसलिए सबने पाप किया क्योंकि उस आदि पिता के माता पिता के हम बन गए और इसलिए एक के कारण मृत्यु आई, एक के कारण पाप आया और वो सारे मनुष्य में फैल गया और हम उसमें संभागी हो गए। लेकिन अब ये स्त्री पर अनुग्रह हो रहा है, ना केवल उस स्त्री पर अनुग्रह है लेकिन इस स्त्री को उपयोग किया जा रहा है ताकि परमेश्वर के एक अद्भुत काम करे। और वो अद्भुत काम क्या करे जिसको हम आगे चल के देखते हैं, लूका उसके पहले अध्याय के 31 पद में। तब वो परमेश्वर कह रहा है मरियम देख, ये परमेश्वर की कृपा हुई है तुझ पर, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। क्या हो रहा है? या ये हो रहा है कि देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, तब वो आगे चल के उस पुत्र के बारे में बता रहा है जिसको हम फिर वापस आके देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और हम मरियम के बारे में देखना चाहते हैं। अब यहां पर हम इस बात को, अब एक स्वर्गदूत उस मरियम से बात कर रहा है जिस पर परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि करी है, जिस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, उस स्त्री से वो बात कर रहा है और परमेश्वर उसको एक विशेष योजना में सम्मिलित करते हुए उसको विशेष कार्य के लिए उपयोग करना चाह रहा है। तब आगे चल के जब ये सब कुछ होता है और ये सारी बात हो जाती है, तब 34 पद में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं। स्वर्गदूत ने उसे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगी। आच्छादित होने मतलब तुझे घेर लेगी, तुझे भर देगी, तेरा जो गोख है खाली है उसको भर देगी। और परमेश्वर इस स्त्री को इस प्रकार से उपयोग कर रहा है कि सब कुछ वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जीवन नियंत्रित किया जा सके, उस पर कृपा दृष्टि। और यूं कह रही है कि मैं तो सच है, हम जानते हैं यहूदी उसमें था कि मंगनी के बाद अगर हम बाइबल में और अधिक जाएं तो हम देखते थे कुछ एक समय होता था, और यहूदी प्रथा में यह तरीका था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब हम यौना उसके 14 अध्याय में आते हैं तो वो अपने जाने के बारे में बात करता है और पौलुस को आगे जाके और एक स्पष्ट करता है कि उसने हमारी बात एक कुंवारी के समान हमारे एक से लगाई है, कलीसिया के बारे में संबोधित करता है। उस समय यह होता था कि जब स्त्री और पुरुष की मंगनी होती थी तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, मिल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन पुरुष जाता था और पुरुष को एक विशेष कार्य करना होता था और पुरुष को एक कार्य करना होता था कि इससे पहले के समय आए वो विवाह पूरा हो, उस स्त्री के लिए उसको निवास स्थान तैयार करना पड़ता था। उसी का संबोधन हम जाके यौना उसके 14 अध्याय में देखते हैं। लेकिन अब यहां पर सब कुछ परमेश्वर नियंत्रित कर रहा है और परमेश्वर यूसुफ से भी बात कर रहा है, परमेश्वर मरियम से भी बात कर रहा है। इन लोगों के सामने बहुत सारी समस्या दिख रही है, समाज सामने है, प्रथा सामने है, सब कुछ है, लेकिन उन सब कुछ पर परमेश्वर की योजना प्रबल हो रही है, उस सब कुछ पर परमेश्वर का अधिकार प्रबल हो रहा है। और ये अपने आप को परमेश्वर के अधिकार में डाले, और यहां पर हम मरियम को देखते हैं, मरियम ने अपने आप को परमेश्वर की योजना के अंतर्गत डाला, उसके अधिकार में डाला। यद्यपि उसका समय कैसे होगा, और तब वो उत्तर होता है ये ऐसे होगा। जकरिया में को संदेश दिया गया उसकी क्रिया में, क्रिया प्रतिक्रिया में, और मरियम को संदेश दिया गया मरियम की क्रिया प्रतिक्रिया में, दोनों में फर्क है। जब जकरिया को संदेश दिया जाता है वो संदेह करता है और संदेह करते हुए वो पूछने लगता है ये कैसे मैं कैसे जान सकता हूं, और इसलिए परमेश्वर उसके मुंह को बंद कर देता है। जब मरियम के पास संदेश आता है तो मरियम आश्चर्य करती है, अद्भुत बात उसके लिए, मुझे परमेश्वर ने चुना, मेरे साथ परमेश्वर ऐसे करने जा रहा है, मेरे को परमेश्वर ऐसे कर रहा है, और इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ दूसरी तरह से व्यवहार किया है। यहां हम दोनों चीजों में, अगर आप 18 पद को पढ़ेंगे और 34 पद को पढ़ेंगे, दोनों में आपको दिखाई देगा, 18 पद में वो जकरिया के बारे में, 34 पद में मरियम के बारे में। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हम परमेश्वर के वचन में कम से कम 4 या 5 बार इस बात को आते हैं, उत्पत्ति में पाते हैं परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। जब परमेश्वर अब्राहम के पास जाता है और अब्राहम से बातचीत करता है, सारा के पास जाता है, सारा से बात करता है, वो कहता रही तो तुम इतनी हो गई, तब उसके बाद उत्पत्ति उसके 18 अध्याय में और 14 पद है उसमें कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। अय्यूब के जीवन में उससे पहले यर्मिया के जीवन में हम पाते हैं, यर्मिया कहता है परमेश्वर तू तो सब कुछ कर सकता है, तू असंभव को संभव कर सकता है। जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, अय्यूब इतने संघर्ष में होकर गया और इतने संघर्ष में होने के बाद जैसे ही वो 42 अध्याय में आता है उसके पहले और दूसरे पद में कहता है परमेश्वर तू तेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। इन लोगों ने परमेश्वर की उस अधिकार को समझ लिया, परमेश्वर के सर्व अधिकार को जाना, परमेश्वर के सामर्थ को जाना। और यहां पर परमेश्वर कह रहा है, मरियम से कहता है क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर किसी स्त्री को चुन सकता है, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो परमेश्वर एक गधी के बच्चे से चिल्लाकर आवाज निकलवाकर वो चेतावनी दे सकता है। जब हम निर्गमन उसके 22 23 24 अध्याय में पाते हैं बलाम के बारे में, कई सारी घटनाओं को हम देखते हैं। और यहां पर परमेश्वर मरियम से कह रहा है कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मरियम ने संदेह नहीं किया है, मरियम ने कुछ और नहीं करा है, लेकिन मरियम इस बात को कह रही है, वो कह रहा है अगर हम देखें 35 पद में, स्वर्गदूत ने उससे कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगी, इस कारण वो पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख तब उस कुटुंबी एलिशा के बारे में बताता है कि उसके साथ भी ऐसे ही होने वाला है क्योंकि उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। कारण क्या, क्यों मरियम को उसने कहा, क्योंकि इसी के बाद मरियम और एलिशेबा का आपस में मिलेंगे और ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। और इसलिए मरियम इस बात को एलिशेबा से कहेगी भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तेरे साथ भी ऐसा होगा, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, स्वर्गदूत ने मुझसे ऐसा कहा है और इसलिए मुझे और तुझको उस पर विश्वास करना, उस पर निर्भर रहना है। मेरे प्रियो, विश्वास हमारे जीवन का परमेश्वर पर निर्भर करना सिखाता है। आज हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं लेकिन सबसे कम विश्वास का जीवन व्यतीत करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म, मरियम की कहानी हमें ना केवल घटनाओं को दिखाती है लेकिन उन वास्तवों को दिखाती है कि हमारा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। लेकिन जब यह सारी बात हुई तब मरियम के बारे में कुछ देखे, तब हम आगे पीछे फिर जाएंगे, तब वो क्या कह रहे हैं 38 पद में, मरियम ने कहा देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। मैं प्रभु की दासी हूं, परमेश्वर ने चुना है, उस पर अनुग्रह करा है, परमेश्वर उसको अपने लिए अलग किया है, परमेश्वर उसको उपयोग कर रहा है। अब वो कह रही है मैं तो परमेश्वर की दासी हूं। उसने विश्वास किया है, उसने स्वयं को नम्रता के साथ उस परमेश्वर के अधीन किया है और जो कुछ परमेश्वर करने जा रहा है उसको उसने स्वीकार किया है, व्यवहारिक रीति से, सामाजिक रीति से यह सरल नहीं था स्वीकार करना। क्यों, लोग उसकी निंदा करेंगे, अरे इसकी तो अभी केवल मंगनी हुई है लेकिन कैसे उसने गर्भ धारण कर लिया, क्या कुछ हुआ, लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, समाज उसको निकाल देगा, परिवार उसको निकाल देगा, यह सारी परिस्थिति आएगी। लेकिन मरियम पवित्र थी, मरियम परमेश्वर का सम्मान करती थी, मरियम ने परमेश्वर की योजना में सम्मिलित होना अपने आप के लिए गर्व की बात माना। उसने विश्वास किया, उसने स्वयं को अधीन किया नम्रता में होकर और उसने परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया। और तब लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है इस स्त्री के द्वारा, एक बहुत बड़ा महान काम कर रहा है और वो महान काम जिसमें उसने मुझे और आपको संभागी कर लिया। तब वो आगे पीछे चल हम जाएंगे थोड़ा सा, वो क्या कहता है 31 पद में, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना। पहली बात, तू उसका नाम यीशु रखना। मैंने कहा था इसीलिए कि अगर मत्ती और लूका को दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। और यहां कह रहा है तू उसका नाम यीशु, मती वर्णन करता है, स्वर्गदूत आता है और उसके बाद आगे कहता है मती उसके पहला अध्याय उसके 21 और 22 पद में, और वो कह रहा है कि तू उसका नाम यीशु रखना। और क्या करेगा वो मती और एक कदम आगे चल के बोलता है, वो ये क्या करेगा, वो लोगों के पापों का उद्धार करेगा, वो यीशु उद्धार करता बनकर आ रहा है। परमेश्वर मरियम को उपयोग करके अपनी योजना पूरा कर रहा है। अभी तक मनुष्य उद्धार पाने के लिए बलिदान चढ़ा रहा है, व्यवस्था का पालन कर रहा है, अपना प्रयास कर रहा है, अपना अथक परिश्रम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी वो निराश बैठा हुआ है, उसके पास कोई आशा नहीं है। लेकिन अब यहां पर परमेश्वर की योजना में होकर वो कार्य पूरा हो रहा है कि अब उद्धारकर्ता हमारे जीवन में इस संसार में प्रवेश कर रहा है, जो उस सारे कार्य को पूर्ण करके मनुष्य के लिए उद्धार का रास्ता निकालेगा। उद्धार क्या है? उद्धार परमेश्वर के साथ पुनः संगति में जुड़ जाना है। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है, और इसीलिए यशाया उसके 59 अध्याय दूसरे पद में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर तुमसे अलग हो गया है। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है, लेकिन उस पाप को जिसको परमेश्वर से मनुष्य को पाप ने अलग कर दिया था, अब यह उद्धारकर्ता बनकर प्रभु यीशु संसार में आ रहा है ताकि उस योजना को बनाए और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आकर वो खड़ा हो जाए, उस कार्य को पूरा करे जो बलिदान का कार्य है, जिस बलिदान के द्वारा मनुष्य अभी तक छुटकारा नहीं पा पा रहा है, चाहे वो पशुओं का बलिदान हो, चाहे जानवर का बलिदान हो, पक्षियों का बलिदान हो, जो भी बलिदान उसके द्वारा छुटकारा नहीं पा रहा है, अब वो यीशु जो उद्धारकर्ता है स्वयं मनुष्य और परमेश्वर मनुष्य के बीच में आकर उस पाप के लिए अपने आप को बलिदान करे ताकि मनुष्य पुनः परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, परमेश्वर की सहभागिता में आ जाए। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि पहली बात कहता है तू उसका नाम यीशु रखना जो मनुष्य के जो लोगों का उद्धार करेगा। दूसरी बात कह रहा वो महान होगा, ना केवल वो उद्धार करेगा, ना केवल यीशु होगा, लेकिन वो महान होगा। कैसे महान होगा? महानता इस बात में नहीं कि लोग उसको बहुत बड़ा शासक समझेंगे। जन्म लेने से तक उसने अंत तक अपने सेवा काल में किसी ने उसको महान नहीं समझा। लोगों ने उसको तिरस्कारा, परिवार ने उसको तिरस्कारा, समाज ने उसको तिरस्कारा, सरकार ने, वहां की जो सरकार थी उसने उसको तिरस्कारा, जो वहां के पुजारी लोग थे, याजक लोग थे, उन्होंने उसको तिरस्कारा। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा महान होगा। जी हां, परमेश्वर संसार की दृष्टि में सबसे महान हुआ। कैसे? उसने उस कार्य को पूरा किया और जिसका वर्णन हम पौलुस के द्वारा फिलिपियों के दूसरे अध्याय में पाते हैं। वो दीन हुआ, वो आज्ञाकारी रहा, और आज्ञाकारी यहां तक आगे कर रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु शैली, जिसके कारण परमेश्वर उसको वो महान किया। परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। ये महानता, वो महानता उसकी क्रूस पर से आरंभ होगी। मेरे प्रियो, पृथ्वी के लोग उसको चाहे जैसे देखें, और इसलिए उसने कहा वो महान होगा। ना केवल महान होगा, लेकिन दूसरी बात कहता है, तीसरी बात कहता है, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यूहन्ना उसके 10 अध्याय में आप देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह सेवा में थे, लोग तरह तरह के उसे वाद विवाद कर रहे, बात कर रहे थे। 10 अध्याय में वो कहता है मैं द्वार हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, सब कुछ वर्णन। तब बाद में अंतिम आते समय वो बाद में कहता है, पिता और मैं एक है। जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा। वो अपने पिता को, पिता पवित्र है, पिता सामर्थी है, पिता प्रेमी है, उस पिता के प्रेम को, उस पिता को प्रकट करने के लिए पुत्र संसार में आया। इसीलिए कहा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वो प्रधान परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि वो अपने पिता के प्रेम को, पिता के जीवन को, पिता के सब कुछ को, पवित्रता को वो मेरे और आपके सामने प्रकट करेगा, प्रदर्शित करेगा, प्रमाणित करेगा। और उसने ऐसा ही किया, उसने ऐसा ही किया, और तभी कह सका जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। चौथी बात उसमें वो कहता है, ना केवल ये, तब उसके कहा गया परम पुत्र कहलाएगा और सिंहासन उसको देगा। हमने यशाया उसके अभी 7 अध्याय के पढ़ा था, अभी यशा 7 अध्याय 9 7 में भी, 7 उसके 6 में है, 9 अध्याय को पढ़ा था, उसमें भी उसके बारे में लिखा। वो कौन होगा? प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700 साल पूर्व वो उसके बारे में कहना क्यों लिए? यशायाह 700 साल पूर्व था, तो उससे पहले दाऊद था। दाऊद भजन संहिता 89 में वो पूरा दाऊद प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी करता है, और तब वो कहते हुए वो कैसे होगा, क्या करेगा, सारा उसका वर्णन करता है। समय नहीं कि हम उसमें जाएं, लेकिन घर में जाके आप जरूर पढ़िए साम 89। और तब वो कह रहा है कि वो परम प्रधान का पुत्र और दाऊद का सिंहासन होने से, क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा की गई थी, परमेश्वर ने इस बात को प्रतिज्ञा की थी कि दाऊद का सिंहासन कभी अंत ना होगा। लेकिन वो दाऊद का सिंहासन किस प्रकार से वंश चलते गए और दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, दाऊद के कुल से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और तब उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से आज भी वो सिंहासन पर विराजमान है। वो राज मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जी उठने के बाद लोगों को दिखाई दिया, और तब सबके सामने स्वर्ग पर उठा लिया गया, और आज वो सिंहासन पर विराजमान है। वो सिंहासन जिस सिंहासन के सामने एक दिन हर एक जन झुकेगा, हम प्रकाश वाक्य में उसमें बहुत ही विस्तृत के साथ उसका वर्णन पाते हैं। तब उसके बाद वो पांचवी बात कहता है याकूब के घराने, तो कहता है और वो याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज करेगा। क्या मतलब है याकूब का घराने का? मतलब याकूब को परमेश्वर ने चुना था, और तब बढ़के परमेश्वर ने याकूब का नाम रखा इसराइल, तेरा नाम इसराइल होगा। और इसराइल के कुल से आगे हम चलते हैं किस प्रकार से कुल आगे बढ़ता रहा, और जिसको परमेश्वर बार बार कहता रहा, मैंने तुझसे प्रेम किया है, मैंने तुझको चुना है, मैंने तुझको ठहराया है, मैंने तुझको चुना है। इसराइल एक चुनी प्रजा थी, और तब आगे जब क्या महत्व पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसने अपने आप को बलिदान किया, लेकिन वो उस ओर संकेत था कि जो एक अनंत काल के लिए परमेश्वर अपनी कौम को चुन रहा है, अपनी प्रजा को चुन रहा है, जिसको बना रहा है, वो कौम चुनी कौम उसकी कलीसिया है। ये इसराइल का घराना, जिसके लिए कहता है मैंने तुझे प्रेम किया, इसलिए तुम संख्या में बहुत थे, लेकिन मैंने तुमसे प्रेम किया, तुमको चुना है। और वो चुना, तभी हम पत्रस में आते हैं, नए नियम में पत्रस कहता है हम चुना हुआ एक वंश और प्रजा अधिकारी हैं, उसकी प्रजा है, चुने हुए हैं, और कलीसिया उसकी चुनी हुई है। जो पुराना इसराइल है, पुराना याकूब का घराना है, वो आज प्रभु यीशु मसीह में ये उसकी कलीसिया एक नए घराना है जो अनंत काल के लिए ठहराई गई है। ये परमेश्वर का वचन बोलता था। और तब कहता है कि वो याकूब का घराने पर अनंत काल के लिए राज करेगा, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो हमारा राजा है, हमारा स्वामी है, हमारा प्रभु है। इस कलीसिया का राजा, कलीसिया का स्वामी, कलीसिया का प्रभु है, जो एक दिन कलीसिया उसके साथ अनंत काल तक उसका वास करेगी और उसके साथ आनंद मनाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत है। जितना अधिक हम उनको आरंभ से देखते हैं और उसके कार्य को देखते हैं, किस प्रकार से अपने समय को पूरा करता है, हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से, कृतज्ञता से भर जाता है। वो हमें और अधिक परमेश्वर की निकटता में लाता है, हमें परमेश्वर के प्रति आभारी बनाता है, हम परमेश्वर के प्रति और धन्यवादित होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। ओ परमेश्वर, आपकी योजनाएं अद्भुत है। केवल आपने उस मरियम को, उस स्त्री को, उस नारी को नहीं चुना, लेकिन उस योजना में होकर आपने मुझ तुझ जैसे पुरुष को, स्त्री को, मुझ जैसे तुझ को आपने चुनकर उस योजना में सम्मानित किया, ताकि मैं आपकी सनातन प्रजा बन करके आपके साथ सनातन राज में प्रवेश कर सकूं। तो वो कहता है ना के लिए वो उसके राज का अंत ना होगा, राज का अंत ना होगा, अनंत काल का राज। इसीलिए परमेश्वर ने कहा उसके राज का अंत ना होगा, और वो व्यक्ति जो उस पर विश्वास करेगा, प्रभु ने परमेश्वर का वचन लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे परंतु नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत समय तक उसके साथ राज करने पाए, उसके साथ वास करने पाए। अनंत राज उसका है, और उसने अनंत राज में मुझे और आपको शामिल करने के लिए मनुष्य बन के स्मृति पर आया। सो यहां पर वो क्या संदेश है, वो सरदूत उस इन थोड़े से शब्दों में उस बहुत सारी योजना को जो उत्पत्ति के समय से लेकर या उससे पहले से लेकर अंत तक, जो इस दुनिया की समाप्ति के बाद एक नया राज होगा, नया यरूशलम होगा, उस तक उसकी व्याख्या कर रहा है वो इन चार पांच शब्दों में। यह बड़े दिन का संदेश है, यह यीशु के जन्म का संदेश है कि वो मनुष्य बनकर आ रहा है। संसार के राज असफल हो जाएंगे लेकिन वो अपनी प्रजा को चुनेगा और वो उसको सिर्फ सुनेगा कि वो अपना बलिदान करेगा, और जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करेंगे, पापों से मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, वो उसके राज में शामिल होंगे और वो उस राज के अंत तक उसके भागी होंगे। ये यीशु के जन्म का उद्देश्य है, ये यीशु के जन्म का उद्देश्य है। अतः वो कहता है, तब जब उसे सुना तो मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैं क्या हो रही। तब वो पता नहीं है, वो तब परमेश्वर के साथ आगे बात करता है। मेरे प्रियो, हम इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाने तैयार हैं। जैसे भैया ने कहा अभी कि बहुत अच्छा अवसर होगा, लोगों के सामने बहुत सारी मिथ्याएं हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं, बहुत सारे टीवी में सच्चाई वो प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि टीवी कभी भी जो बोलने वाले हैं वो कभी भी उनको सत्य बोलने के लिए अनुमति नहीं देंगे। आप अगर टीवी बोलेंगे तो आपको कुछ समझौते के साथ बोलना होगा ताकि लोगों को बुरा ना लगे। सुसमाचार एक पवित्र समाचार है, सुसमाचार एक स्पष्ट समाचार है, सुसमाचार एक अलगाव का समाचार है और वो केवल प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। प्रश्न यह है, प्रश्न यह है, क्या प्रभु की कृपा मुझ पर और आप पर हुई है? क्या जिस रीति से परमेश्वर ने उस स्त्री को जो मेरे और आपके समान इस संसार में जन्म दिया, स्त्री ने जो मेरे और आपके समान साधारण थी, जिसको लोग देखते नहीं थे, लेकिन प्रभु की दृष्टि उस पर आ गई और प्रभु ने उस पर कृपा करके अपनी योजना में शामिल कर लिया। और उसकी योजना, सबसे बड़ी योजना यह है कि उसके राज को लोग समझ सकें और उसके संभागी हो सके। सबसे बड़ी योजना उसके राज को समझ सकें और उसके राज में संभागी हो सके। क्या वो कृपा, वो अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में हुआ है? हो सकता है हम 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल या कितने साल, 50 साल से यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं। इस साल भी आएगा, मनाएंगे, फिर अगला साल आएगा, फिर मनाएंगे, लेकिन क्या मेरा और आपका हृदय गवाही देता है? और उस योजना में के कारण, उस अनुग्रह के कारण हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, हम दीनता से उसके अपने आप को उसके सामने समर्पित करते हुए उसको स्वीकार करने तैयार होते हैं, उसकी योजना स्वीकार करने तैयार होते हैं। प्रश्न यह है, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जीवन और अधिक प्रभु पर निर्भर होने वाला हो। प्रभु नहीं चाहता केवल हम जन्मदिन मनाएं, खुशी मनाएं, लेकिन उसके भेद से, उसके रहस्य से हम परे रहे, हम परे रहे। प्रभु मेरी और आपके आंखों को खोले। हो सकता है मैंने और आपने उसको एक दिन स्वीकार किया हो, लेकिन कोई पाप के कारण, किसी और दूसरी चीज के कारण हम अपने आप को उस योजना में सम्मिलित नहीं करने पाए जो परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा पूरा करना चाहता है। मेरे प्रियो, हो सकता है ये समय ऐसा हो कि मेरा और आपका लौट आने का समय हो, उसको पहचानते हुए, उसको समझते हुए, उसको जानते हुए। वो स्वर्गदूतों का संदेश आज मेरे और आपसे नई रीति से बात करने लगे, जो मरियम ने सुन के प्रत्युत्तर दे दिया, मैं और आप उन वचनों को सुन करके परमेश्वर का प्रत्युत्तर दे सके और उस प्रत्युत्तर के द्वारा उस पर संभागी हो सके। आई एम प्रार्थना। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए, और इन दिनों में प्रभु हमें और अधिक गंभीरता के साथ हमारी मदद कीजिए, ताकि हम विचार कर सकें और आपकी महानता हमारे जीवन में कार्यकारी हो सके, आपकी पवित्र आत्मा की प्रभुता हमारे जीवन पाई जा सके। प्रभु जी हम सच में आपके राज को समझ सकें और आपके राज की बढ़ोतरी मेरे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे द्वारा लोगों के जीवन में और अधिक बढ़ सके। वचन की रक्षा करें और हमें अपने अनुग्रह में बना के रखें, यीशु मसीह के नाम में।